राम हरे 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 कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशालों भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रार्थनाओं और वंदनाओं के अंतर्गत हम ऋषिवर सुखदेव गोस्वामी के मंगलाचरण को दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के अंतर्गत 12वें श्लोक से कल हमने शुभारंभ किया था। 14वें श्लोक का हम पाठ करके आधा पढ़ चुके थे। इस श्लोक का भाव आगे आज देखते हैं। नमस्कार चल रहा है, तीन श्लोक, दो में नमस्कार हो चुका है, तीसरे में भी नमस्कार है। नमो नमस्ते अस्तु ऋषभाय सात्वताम विदुर काष्ठाय मुह कुयोगिनाम निरस्त साम्या अतिशे नराधसा स्वधामिना ब्रह्मणि संयमना रमन रंसते नमः। आपको बार बार नमस्कार करते हैं। ऋषभाय सात्वताम, यहाँ सात्वताम का भाव है वृष्णि वंश में, और ऋषभाय का मतलब वासुदेव कृष्ण के, यहाँ श्री कृष्ण वासुदेव, वसुदेव के यहाँ वासुदेव, वासुदेव है श्री कृष्ण जो वसुदेव के यहाँ प्रकट हुआ है, वो है ऋषभ, वो है श्रेष्ठ। किस में श्रेष्ठ है? यदुकुल में। उसको नमस्कार करते हैं। क्या काम करता है ऋषभाय सात्वताम का मतलब क्या है? अपने भक्तों का रक्षक। और विदुर काष्ठाय मुह कोई कोई कुयोगी नाम, जो कुयोगी हैं, जो अनधिकारी हैं, जो अभक्त हैं, उनसे भगवान बहुत दूर हैं। उनको वो भगवान से बहुत दूर हैं, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान करते क्या है? नस्त साम्य अतिशय राधसा, अतिशय राधसा, अति भगवान का वैभव है, जलवा है। जैसे हमारा पूरा 10वां अध्याय है विभूति, अद्भुत अनंत विभूतियों का स्वामी है। नस्त उसके समान कोई नहीं हो सकता, नस्त साम्य उसके समान कोई नहीं। और स्वधाम इन्हें ब्रह्मणी रंग सते नमः, अपने धाम में वृंदावन में भक्तों के संग अपने आनंद लेता है, रमन से रमण करता है। सराध सा राधा के साथ, हमारे राधा कृष्ण के समान और कोई नहीं, उनकी तुलना, उनका साम्य, उनके समान कोई नहीं, तो उनके अति कौन हो सकता है? वो ही नित्य ब्रज में अपनी लीलाएं करते रहते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। और चक्रवर्ती पाद का कल हमने भाव पढ़ा था। श्रील प्रभुपाद जी ने इस भाव में विशेष रूप से ये लिखा था कि ये ऋषभ सात्वताम के अंतर्गत में सारे भगवान के जो संबंध है उनका वर्णन किया था। जैसे नंद बाबा और यशोदा का पुत्र का संबंध है, मधुमंगल का मित्र का संबंध है, अर्जुन का सखा का संबंध है, ऐसे इन सब का वर्णन किया था। यदुवंशु का अपना परिवार का संबंध है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं परंतु जो दूसरे हैं, जो भगवान के रूप को मानते ही नहीं है, जो भगवान को निराकार मानते हैं, तो वो बेचारा संबंध क्या स्थापित करेंगे। और फिर ब्रह्म ज्योति का वर्णन किया कि वो करते हैं ब्रह्म ज्योति की उपासना, तो प्रकाश की उपासना करते हैं, वो प्रकाश तो भगवान के चरणों से निकलता है, और वो सारा आध्यात्मिक जगत उस प्रकाश से प्रकाशमान है, और जहां उस प्रकाश के ऊपर महत्त्व का बादल आता है उसको भौतिक जगत कहते हैं। और ये भौतिक जगत जो है जिसमें हम रहते हैं, ऐसे कोटि और भौतिक जगत हैं। एक ये एक दुनिया में हम रहते हैं, ऐसे कई और दुनियाएं हैं, हमको मालूम नहीं है, लेकिन है कोटि ब्रह्मांड है। और फिर आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ है, वो भी कोटि वैकुंठ है, एक नहीं है, अनंत कोटि वैकुंठ है। तीन गुना ये एक चौथा हिस्सा है आध्यात्मिक जगत, ये मतलब करोड़ों लोक मिलाकर, जिसमें से हमारा एक छोटा सा लोक है, ऐसे कोटि करोड़ लोक ऐसे इकट्ठे करो, वो सब मिलाओ तो एक चौथाई, 1/4 होगा, 3/4 तो आध्यात्मिक जगत है, तीन चौथाई आध्यात्मिक जगत है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहां अनंत वैकुंठ है। और उन अनंत वैकुंठ तक जाने के लिए कोई प्रयास भौतिक मार्ग से नहीं किया जा सकता। पहुपा जी ने कल हमने पढ़ा था, लिखा है कि कोई वहां जाने का कितना प्रयास करे लेकिन वहां नहीं जा सकता, वहां भक्ति से जा सकता है। प्रभुपा जी ने इस्कान स्थापना से पहले एक पुस्तक लिखा था, अन्य लोकों की यात्रा। अन्य लोकों की यात्रा वो कोई जहाज से नहीं होगी, अपने साधन से होगी। और ये तो भगवत गीता का प्रसिद्ध श्लोक है कि देवान यान्ति देवव्रता, पितृन यान्ति पितृव्रता, भूतान यान्ति भूतेजया, याति मध्यान्होपि अपि। जो देवता की पूजा करते हैं देवलोक में जाते हैं, पितर की पूजा करते हैं पितृलोक में जाते हैं, भूत की पूजा करते हैं भूतलोक में जाते हैं, मेरी पूजा करते हैं मेरे पास में आते हैं। ये यथामाम प्रपद्यन्ति, जैसे जिस भाव से मेरे पास आता है मैं वैसे व्यवहार करता हूँ। कोई ब्रह्म में लीन होता है तो उसको ब्रह्म में लीन करता हूँ। परंतु वैकुंठ, प्रभुपाद लिखते हैं वैकुंठों के ऊपर सारे वैकुंठ में नारायण है, लक्ष्मी नारायण की उपासना होती है वैकुंठ में। और चार हाथ भगवान के चतुर्भुज रूप है ना, जो जो उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है वो एक से दूसरे में अलग है। राइट हैंड में कहीं चक्र है तो कहीं राइट हैंड में गदा है, तो उनका नाम भी अलग हो जाता है। कहीं उनका नाम वासुदेव होता है, कहीं माधव होता है, कहीं केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, ऐसे अलग अलग नाम भगवान के। वो ऐसे तो बहुत से वैकुंठ हैं, उनसे ऊपर साकेत है जहाँ सीताराम लक्ष्मण और राम भक्तों का निवास है। वो भी वैकुंठ के एक विशेष विभाग में उनका स्थान है। उनसे आगे फिर द्वारका है, जहाँ द्वारका के यदुवंशी जो भक्त के भगवान श्री कृष्ण के वैभव और द्वारकाधीश के रूप में पूजते हैं। उससे ऊपर मथुरा है और उससे ऊपर गोलोक धाम है, जहाँ भगवान के निज पार्षद जो भगवान के राग आत्मिक भक्त हैं वो सब वहां रहते हैं। और जो राग अनोगा मार्ग से भक्ति करते हैं वो वहां जाने के अधिकारी होते हैं। और प्रभुपाद जी भगवान के धाम के लिए भगवत गीता का ये श्लोक लिखा है कि भगवान के धाम से न तदभास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। ये 15वें अध्याय का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, 6 नंबर। मेरे वो धाम जहाँ कोई प्रकाश किया, न सूर्य की जरूरत है, न चंद्रमा की जरूरत है, न अग्नि की जरूरत है, न विद्युत की जरूरत है। और जो एक बार वहां आता है उसको कभी वापस लौटना नहीं पड़ता है, न मरना पड़ता है और न जन्म लेना पड़ता है, न बीमार होना पड़ता है, न बूढ़ा होना पड़ता है। वो नित्य वहां आनंद से रहता है। और फिर आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ये वैकुंठ और गोलोक आदि धाम स्वयं प्रकाशित है, स्वधाम है, भगवान का अपना धाम है, स्वयं प्रकाशित है। और प्रकाश कहाँ से आता है? भगवान का अपना ही प्रकाश है। और केवल भगवत गीता में ये नहीं लिखा है, मांडुक उपनिषद में और श्वेताश्वर उपनिषद में भी ये लिखा है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम्। न तत्र सूर्यो भाति, वहां सूर्य का रोशनी की जरूरत है, भाति का मतलब प्रकाश। चंद्र की जरूरत नहीं है, चंद्रमा की, तारों की जरूरत नहीं है। नेमा विद्युतो, वहां बिजली की जरूरत नहीं है। भांति कुतो अन्य अग्नि, फिर अग्नि की क्या जरूरत होगी। तमेव भांतुम अनुभाति सर्वम, वहां जो भगवान का प्रकाश है उससे सब कुछ प्रकाशित है। तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, उसी के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित है। ये भगवान के स्वधाम का वर्णन है। और जहां ये भगवत गीता में लिखा है, वहां श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि लोग अमेरिका के उच्च रहने के स्तर का सुनते हैं, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का उच्च स्तर सुनते हैं तो वहां जाना चाहते हैं। और यहाँ इतना उच्च स्तर बताया जा रहा है भगवान के धाम में, ना जब बीमारी है, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु है, वहां क्यों नहीं लोग जाना चाहते। वहां सदा नवयुवक रहते हैं और खेलते रहते हैं, आनंद में मगन रहते हैं, वहां जाने में लोगों की इच्छा क्यों नहीं होती। तो ये भगवान का स्वधाम है। तो भगवान के इस प्रकाश का इतना चकाचुंद करने वाला प्रकाश है कि उसके पीछे जो भगवान है वो दिखता नहीं है। रोशनी इतनी ज्यादा है उससे आ रही है भगवान से कि भगवान दिखता नहीं है, इसलिए ईश्वर उपनिषद का ये श्लोक है, हिरण्य माया पात्रेण सत्यस्याहापिहितं मुखम हिरण्यमय पात्रेण, हिरण्यमय पात्रेण, हिरण्य सोने जैसा बहुत तेज निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, और इस प्रकाश से आपका मुख मंडल दिखाई नहीं दे रहा है। तंतुम पुष्मावरणो अपावरणो सत्य धर्माय दृष्टये, भगवान इस प्रकाश को थोड़ा हटा दीजिए, हम आपके सुंदर मुख मंडल का दर्शन कर लें। तो भगवान से इतना तेज निकलता है, उस तेज को देख के ही लोग कहते हैं यही भगवान है, लेकिन एक भक्त कहता है भगवान इस तेज को थोड़ा हटाइए, जहां से ये तेज निकलता है उसको तो मैं देख लूं। तो ये भगवान के मुख को देखने के लिए सत्य धर्मा, यहां एक सत्य धर्म की परिभाषा लिखी है, भगवान आप सबके पालक हैं, भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, सभी आपके ऊपर आश्रित है, आप ही उसके पालक हैं, आप ही रक्षक हैं, और आपकी ही कृपा के ऊपर सबका सुख और सबकी समृद्धि आश्रित है, आपकी भक्ति वही एकमात्र धर्म है, सत्य धर्म वही है, और मैं उस भक्ति में लगा हूं, इसलिए कृपा करके आपके मुखमंडल को देखने की मेरी इच्छा है, इसलिए ये ब्रह्म ज्योति का जो प्रकाश का पर्दा है इसको आप थोड़ा सा एक तरफ कर लीजिए, ताकि आपके सच्चिदानंद बड़े मुस्कुराते हुए मुख का मैं दर्शन कर लूं। अब हम 15वें श्लोक का पाठ करने जा रहे हैं, ये सुखदेव गोस्वामी वृक्ष चूड़ामणि ब्रह्म आनंद में पहले ही मुख ब्रह्म को साक्षात किया हुआ था, ब्रह्म ज्ञानियों के सिरमौर हैं, लेकिन भगवान की कथा से इतने आकर्षित हुए कि ब्रह्म ज्ञान को एक एक बूंद जितना, एक बूंद का मतलब है एक वन ड्रॉप के समान समझ के, और भगवान कथा के सागर में स्वयं कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ, मैं ब्रह्मनिष्ठ था, परंतु भगवान की लीला कथाओं ने मेरे को भागवत को अध्ययन करने के लिए, भागवत को पढ़ने के लिए मेरे पिताजी के पास 18,000 श्लोकों का मैंने अध्ययन किया। अब ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आ रहा है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय ते दुष्कृतान, ये तो दो बातें हो गई कि भगवान आप साधुओं की भक्तों की रक्षण करते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं, तो सामान्य लोग भक्त बने कैसे? दुनिया में दुख इतना है कि लोग दुख से मुक्त हों तब कोई भगवान की भक्ति करें, तो साधन क्या है? तो दुख निवृत्ति का एक अद्भुत साधन यहां बताया जा रहा है, यद कीर्तनम यद स्मरणम यद ईक्षणम यद वंदनम यशार्वणम यद आरणम, 6 बातें लिखी है, और यत का मतलब जिसका, जिसका कीर्तन करना, जिसका सुमरण करना, जिसका दर्शन करना, जिसकी वंदना करना, जिसका श्रवण करना और जिसका पूजन करना, अर्णन का मतलब पूजन करना, ये 6 काम करने से क्या होगा, लोकस्य सद्यो, लोकस्य मतलब सामान्य सारे संसार के लोकों का, सद्यो का मतलब तत्काल, अभी का अभी, इम अभी, सद्य अभी, अभी का अभी क्या होगा, विधनोति कल्मषम, कल्मषम नाश हो जाएगा, कल्मष नाश हो जाएगा, कल्मष मतलब पाप, नाश नहीं होगा विधनोति होगा, विनाश हो जाएगा, निशान भी नहीं रहेगा, जड़ भी उखड़ जाएगी, दोबारा कभी उगेगा भी नहीं। तस्मै सुभद्रये सर्वसे नमो नमः, ये श्लोक पाठ करने जैसा है, यद कीर्तनम यद स्मरणम यद ईक्षणम यद वंदनम यद शर्वणम यद अहरणम, लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। सुभद्र सर्वसे जो शब्द है ये भगवान का एक नाम है, जिसके विषय में श्रवण करना शुभ है, सुभद्र है, भद्र का मतलब मंगलकारी है, जिसका श्रवण मंगलकारी है, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। अब प्रभुपाद जी के अनुवाद में पहले शब्द देखिए, हम उस भगवान को आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं जो मंगलकारी है, जो शुभ है, जिसके विषय में श्रवण करना शुभ है। ये अब श्लोक यहां से यही शब्द आएगा तीन श्लोकों में कम से कम, शुभ सुभद्र सर्वसे, भगवान का नाम है सुभद्र सर्वसे, जिसके विषय में सुनना सुभद्र है, अति मंगलकारी है, अति कल्याणकारी है, अति ऑस्पिशियस है, ऑल ऑस्पिशियस। तो क्या करना चाहिए भगवान के विषय में? यद कीर्तनम, कीर्तन का आचार्य स्वयं सुखदेव गोस्वामी है। कीर्तन भगवान के नाम का कीर्तन होता है, जैसे हम कहते हैं हरे कृष्ण। भगवान के रूप का कीर्तन होता है, जैसे मुरली मनोहर भगवान, पीताम्बर धारी। भगवान के गुण का कीर्तन होता है, भक्त वत्सल भगवान। भगवान के धाम का कीर्तन होता है, तो लीला का कीर्तन है। रूप का मतलब लीला का कीर्तन है, भगवान की बहुत अद्भुत लीलाओं का कीर्तन है। और प्रभुपाद जी कहेंगे भगवत गीता और भागवत को पढ़ना यह भी कीर्तन है। तो ये कीर्तन है। और यत सुमरणम, सुमरण का आचार्य है प्रहलाद महाराज। सुमरण का मतलब है याद करना। सुमरण की परिभाषा ये है, सुमरण की परिकाष्ठा ये है कि सर्वत्र भगवान की स्मृति बनी रहे। सर्वत्र मतलब सब जगह, सर्वत्र सब जगह सब समय भगवान की स्मृति बनी रहे, कहीं भी हो कैसी भी। प्रहलाद महाराज है सुमरणाचार्य, जिसको सांपों के बीच में रखा गया तो भी भगवान का दर्शन कर रहा है। और हिरण्यकश्यप ने कहा तुम्हारा भगवान कहां है, बोला सब जगह है। ये है भगवान की, ये सुमरण की सिद्धि है। और कहा इस खंभे में है, तो कहां मुझे दिख रहा है, वहां भी उस खंभे में उसको दिख रहा था। तो ये सुमरण की परिकाष्ठा है। कीर्तन, कीर्तन की सिद्धि अवस्था क्या है? नयनम गलदा श्रुधार या वधनम गदगद रुद्ध या गिरा पुलकेर निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, भगवान आपके नाम का कीर्तन करूं, मेरी आंखों से आंसू धाराएं बहें, गला रुंध जाए, शरीर में रोमांच हो, वो कब दिन आएगा। ये कीर्तन की सिद्ध अवस्था है, ये सिद्धि है कीर्तन की। कीर्तन करते करते समय का पता नहीं लगे, आनंद में आनंद। और सुमरणम, सर्वत्र भगवान की स्मृति हो, कहीं भी कुछ भी दिखे तो भगवान ही दिख रहा है। वो एक बार युद्ध के समय में प्रभुपाद से पूछा था, बम गिरा तो शत्रु ने, बोला उस बम में भगवान का दर्शन कर लेंगे, कि भगवान बम के रूप में आ रहे हैं। तो ये सुमरण ऐसा है कि कहीं ऐसा स्थान है नहीं जहां भगवान नहीं है, तो ये भगवान के सुमरण में इतना तलीनता हो जाए, ये सुमरण की सिद्धि है। और ये सुमरणी माला है ना, इसको संस्कृत में सुमरणी कहते हैं। ये जब तक सुमरण करेंगे तब हमारे को ये याद रहेगा। और यद ईक्षणम, ईक्षणम का आंख से दर्शन करना, ये भगवान के श्री विग्रह जो मंदिर में स्थापित है, इसके दर्शन के विषय में कहा जा रहा है, भगवान के दर्शन मात्र से। और दर्शन करने में भी इतनी उत्कंठा होती है दर्शन करने की, कि भगवान से मिलने जा रहे हैं, रोज भगवान से मिलने का टाइम रखा हुआ है, भगवान से रोज मुलाकात करने जा रहे हैं। इसकी सिद्धि एक बहुत अद्भुत कथा आती है। वो एक सद गृहस्थी थे, अपना घर काम धंधा जो भी खेती बाड़ी करते थे। भगवान से नारद जी ने पूछा कि आपका कौन ऐसा भक्त है जो आपके दर्शन में सिद्ध हो चुका है? बोला वो, बोला क्या करता है? बोला रोज मंगल आरती पे पहुंचता था, सुबह सवेरे पहुंचता है भगवान के दर्शन करने। तो नारद जी जाने जाके रास्ते में खड़े हो गए मंदिर के, और ये जा रहा था तो इसको कहा, कहाँ जा रहे हो? बोला भगवान का दर्शन करने सुबह। बोला आरती तो हो गई पर दरवाजा बंद हो गया, वहीं गिर गया। बोला आज दर्शन नहीं हुआ तो जी के क्या करूंगा, भगवान का दर्शन नहीं तो जीवन किस काम का। आगे बढ़ के देखा है तो उसका परिवार के दूसरे लोग आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहे हैं। गिर पड़े, कहा कि मंदिर बंद हो गया, गिर पड़े। तब नारद जी ने सबको कहा नहीं उठो, भगवान का दर्शन करो, अब मंदिर बंद नहीं हुआ है। तो ये साथ भगवान के दर्शन करने के लिए प्रभुपाद जी कहते थे ये हमारे जो ठाकुर जी हैं ये बोलते हैं, ये बात करते हैं, ये मुस्कुराते हैं, ये तुम्हारे अंदर के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, लेकिन उनकी भाषा समझने के लिए आपके हृदय को शुद्ध होना चाहिए। जब वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर की भगवान ने प्रभुपाद जी ने स्थापना की तो कहा कि देखो अब आपके पास कोई परेशानी है, दुख है, तो जाओ, भगवान आ गए हैं, उनको कहो ये हमारी समस्या है, वो समाधान कर दें। तो भगवान का ये विग्रह जो है ये चलते, ये विग्रह कैसे हैं आप तो एक सबको मालूम है, हम देख के आए हैं। साक्षी गोपाल जो वृंदावन से भगवान मूर्ति थी, लेकिन मूर्ति तो मूर्ति उनके लिए है जो स्वयं अभी तक जड़ बने हुए हैं, जिनके हृदय में चेतनता आ गई है उनके लिए मूर्ति मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान इस रूप में कृपा करके अवतार लेके हमारी सेवा ले रहे हैं। इसको अर्चा अवतार कहते हैं, ये भगवान का अर्चा का अवतार है। तो वो यहाँ से ठाकुर जी चल के और आज जगन्नाथपुरी के पास बैठे हैं साक्षी गोपाल जी, वो ब्रिज से चल के वहां चले गए। वो रविदास पुराने जूते बनाता था, चमार का काम करता था, वो भी पुराने जूते, लेकिन ठाकुर जी को पूजा करते थे। तो ब्राह्मणों उनके ऊपर आरोप लगाया कि ये तो वो पाने ही जूते वाला है, उससे हाथ है, उससे भगवान को हाथ लगाता है, ऐसे थोड़ी पूजा होती है। राजा ने रविदास को बुलाया और ब्राह्मणों को बुलाया, कहा कि तुम ऐसी पूजा करते हो, ब्राह्मण तुम्हारे ऊपर कहते हैं तुम्हारी पूजा की विधि ठीक नहीं है। उसने कहा हम कुछ नहीं जानते हैं, भगवान जिससे जो हमारे पास है उससे पूजा करते हैं, ये तालाब है आपका, इसके अंदर सबके भगवानों को पधरा दो और ब्राह्मणों को कहो मंत्र उच्चारण करें, उनका भगवान आ जाए, मैं अपने भगवान को बुलाऊंगा, जिसका भगवान आ जाए वो उसकी पूजा से प्रसन्न है, समझ लेना। सबकी मूर्तियों को पधरा दिया गया, ब्राह्मणों ने बड़े वेदों का वाचन किया। इसने कहा हे गोविंद बहु जन्म बिछड़े, बहु जन्म बिछड़े गोविंद, हे जन्म तुम्हारे, कई जन्मों से बिछड़े हैं, ये जन्म गोविंद आपके हवाले है। और इनका ठाकुर जी निकल के बाहर आ गया जल से। तो ये भगवान का जो विग्रह है ये साक्षात, अभी भी बहुत से ऐसे विग्रह हैं जो साक्षात पुजारियों को हम गए थे, खीर चोर गोपीनाथ ने, जिन्होंने अपने भक्त के लिए खीर की चोरी कर ली माधवेंद्रपुरी के लिए। तो ये इन विग्रहों के अंदर श्रद्धा होने से ये साक्षात, ये अंतर है। महाभागवत में उत्तम भक्त में और कनिष्ठ भक्त में, मतलब नए भक्त में और शुद्ध भक्त में अंतर ये है। शुद्ध भक्त भगवान के विग्रह को साक्षात भगवान मानता है और नया भक्त उसको मूर्ति मानता है, बस इतना अंतर है। तो ईक्षणम में सिद्धि ये है कि यही साक्षात भगवान है, इसी रूप में हमारे सामने प्रकट हुए। यद वंदनम, वंदना का आचार्य कौन है? अक्रूर जी है वंदना के आचार्य। इन नवदा भक्ति में यहां कीर्तन है, स्मरण है, वंदना है और श्रवण आगे आएगा, अहरण आएगा, पांच अंग यहां नवदा भक्ति के पांच अंग इसमें आए हैं। वंदना भक्ति का आचार्य है अक्रूर जी, जो भगवान श्री कृष्ण को लेने जा रहे थे बलराम जी के साथ, तो रास्ते में जो वंदना कर रहे थे कि कैसे भगवान मिलेंगे, और जहां भगवान के चरणों के निशान रास्ते में देखे वहां रथ से उतर के उनके ऊपर लोट लोट के और प्रार्थना कर रहे थे कि बाज मुझे भगवान का दर्शन। सब यदुवंशी कंस के भय से मथुरा छोड़ के चले गए थे, मैं कैसे भी कंस के साथ संधि करके कृष्ण के दर्शन के कर लिए रुका हुआ था, अब मुझे ये अवसर मिला है। काम तो क्रूर कंस ने उनको यहां लाने का कहा है, परंतु उनके दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा, वो मुझे काका कहेंगे, मैं उनको प्रणाम करूंगा, वो मुझको ऊपर उठा लेंगे, ऐसे वंदना करता हुआ जा रहा है। तो वंदना का मतलब है प्रार्थना करना। प्रार्थना बहुत शक्तिशाली साधन है, बहुत बड़ा शक्तिशाली साधन है प्रार्थना, भगवान को करना। प्रार्थना वंदना वंदन भगवान की महिमा गाना। तो ये जो प्रार्थना है इसमें एक सामान्य प्रार्थना होती है, संप्राथात्मिक, भगवान हमारे ऊपर कृपा करना, आप दयालु हो। एक होती है दैन्य बोधि का प्रार्थना, वंदना होती है दैन्य बोधि का, मैं बहुत नीच हूं, मैं पतित हूं, मैं पापी हूं, मैं भगवान फिर भी आपको प्राप्त करने की आशा करता हूं, ये दैन्य बोधि का, मैं बहुत दीन हूं। और एक है लालसामयी प्रार्थना, वो भक्ति के भाव के स्तर पे होती है, भगवान वो दिन कब होगा जब हम आपको चंवर झुलाएंगे, भगवान आपके चरणों में खड़े होंगे, आपकी सेवा करेंगे, ये भाव, ये लालसामयी प्रार्थना है, ये वंदना है। और अक्रूर जी की प्रार्थना वंदना तो लालसामयी थी कि भगवान कब मुझे मिलेंगे। तो ये प्रार्थनाओं के भी बहुत सारी वंदनाओं के, और फिर अष्टव पाठ है, जैसे हम पढ़ रहे हैं ये सब प्रार्थनाएं हैं, ये प्रार्थनाएं शुद्ध भक्तों की है, इनका बहुत से लोग पाठ करते हैं तो वो भी वंदना है, स्तव पाठ है, स्तुतियां हैं, वो वेदों में पहले ऋषियों मुनियों ने की हुई है, उसको स्तुति कहते हैं, तो ये वंदना के अंतर्गत आता है। और यत्श्रवणम, जिसका श्रवण करना, और श्रवण के आचार्य तो परीक्षित महाराज स्वयं है, 7 दिन तक बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए धारावाहिक कथा सुन रहे थे, और कथा सुनने में थक भी नहीं रहे थे, प्यास भी नहीं लग रही थी, स्वयं कहेंगे, दो हम पढ़ेंगे 2 श्लोकों के बाद, ओ भूख भी नहीं लग रही है, प्यास भी नहीं लग रही है, श्रवण में अमृत पान हो रहा है कानों के द्वारा, श्रवण की सिद्धि ये है कि समय का पता नहीं लगे, कथा चलती है, श्रवण कर रहे हैं, समय कितना बीत गया पता नहीं लगे। तो जिसका श्रवण, और श्रवण सबसे शक्तिशाली साधन है, इसलिए भगवान का नाम ही है सुभद्र शर्वसे, जिसका श्रवण सुभद्र है, मंगलमय है, कल्याणकारी है, ऑल ऑस्पिशियस है। यद अहरणम, अहरणम का मतलब पूजन, और पूजा, अहरण का आचार्य कौन है, अहरणम का आचार्य है पृथु महाराज, पूजनम, जो कहते हैं भगवान आपकी पूजा करते समय लक्ष्मी से आपको बहुत स्नेह है, वो तो आपके चरणों पर सदा बैठती है, सदा चरणों की सेवा करती है, मैं पूजा करूं तो ऐसे न हो कि लक्ष्मी के कारण मुझे पूजा से आप दूर कर दो, मुझे निश्चय है कि आप मेरी सेवा को स्वीकार करेंगे, ऐसा पृथु महाराज का बड़ा अद्भुत भाव है अर्चना का। तो ये अहरणम है, तो ये 6 चीजें करने से होगा क्या, लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम, सामान्य संसार के जीवों का सारा दुख ताप साताप संताप जड़ से उखड़ के चला जाएगा, फिर दोबारा कभी आएगा नहीं जीवन में, तस्मय इसलिए सुभद्र शर्वसे नमो नमः, उस मंगलकारी भगवान के जिसका श्रवण ही मंगलकारी है उसको बारंबार नमस्कार करते हैं। और चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, जो कलमश, ऑल द इम्प्योरिटीज, जो अपवित्रताएं, जो कष्ट रास्ते में भगवान को प्राप्ति करने के रास्ते में बाधा है, रुकावट है, वो सब नाश हो जाती है, कैसे, भगवान का स्मरण करने से, भगवान का दर्शन करने से। कैसा भगवान है, सुभद्र शर्वसे। श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य का पहली लाइन बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण है, द सबलाइम फॉर्म ऑफ रिलीजियस परफॉर्मेंस। ये सबलाइम ऐसा शब्द है जो केमिस्ट्री में आता है, सबलिमेशन, 2 चीजों को मिलाने से तीसरी चीज बन जाती है, पता नहीं लगता है कैसे हुआ। तो ये धर्म का वो मार्ग है जिसमें आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा, क्या परिवर्तन हो जाएगा, पापमय जीवन समाप्त हो जाएगा, पुण्य आत्मा हो बन जाओगे, भक्त बन जाओगे, पता भी नहीं लगेगा। ये सबलाइम, ये बहुत उत्तम परिवर्तन, जीवन में परिवर्तन करने वाला धर्म का मार्ग है, जिसके द्वारा सारे पापों से कैसे एक व्यक्ति मुक्त हो सकता है, उसके लिए परम अधिकारी व्यक्ति सुखदेव महाराज यहां घोषणा कर रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कीर्तन बहुत प्रकार है, कीर्तन के सुमरण के बहुत प्रकार है। भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन करना, प्रार्थना करना, कहाँ करना है प्रार्थना, कैसे सुमरण होगा? जब भगवान का दर्शन करने जाएंगे, वहां प्रार्थना करेंगे तो वंदना हो जाएगी, और ऐसे भगवान की कथा सुनना है, श्रीमद् भागवत है, भगवद् गीता है, ये भी कीर्तन है। गीता सुन रहे हैं, भागवत कर रहे हैं, ये भी कीर्तन हो रहा है। हम कीर्तन कर रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं, दो काम साथ में हो रहे हैं। हम कीर्तन केवल नहीं कर रहे हैं, हम कीर्तन करते हैं तब साथ में श्रवण भी हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि कीर्तन करने वाले को दो फायदे हैं, श्रवण भी हो रहा है, कीर्तन भी हो रहा है, और स्मरण हो रहा है, याद होगा तब तो बोलेगा, तो तीन काम साथ हो रहे हैं आपको। आपको एक लाभ हो रहा है श्रवण का, और इसको याद रखोगे तो आपका स्मरण भी हो जाएगा, और फिर किसी को बताओगे तो कीर्तन भी हो जाएगा। एक तो कीर्तन होता है भाई वाद्य के साथ, हारमोनियम बाजे के साथ, या मृदंग करताल के साथ, परंतु भगवत गीता और भागवत जैसे शास्त्रों का प्रवचन करना अथवा उनका पाठ करना भी कीर्तन है। अब प्रभुपाद जी एक बात लिखते हैं कि भक्तों को निराशा नहीं होना चाहिए। किस बात से? कि भगवान हमारे सामने तो नहीं है। अक्रूर कीर्तन कर रहे थे तो भगवान उनको उधर ही थे, कृष्ण बलराम उसको लेने जा रहे थे। प्रहलाद महाराज के लिए तो नरसिंहदेव प्रकट हो गए। सुखदेव महाराज को जन्म से पहले ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने के लिए आके कह के गए, चले गए, दर्शन उसने किया, और कृपा सिद्ध है। वैसे कृपा सुखदेव महाराज कृपा सिद्ध है, भगवान ने आके कृपा कर दी। तो यहां प्रभुपाद लिखे इसलिए हमको निराशा नहीं होना चाहिए। क्यों? ये जो भक्तिमय श्रवण कीर्तन का जो मार्ग है, सुमरण का मार्ग है, और भी श्रवण कीर्तन सुमरण अर्चन वंदन ये जो भी मार्ग है, एक या दो या तीन या सब, ये हमारे को हमारी इच्छुक को फल भगवान के सानिध्य का प्राप्त करा देंगे। ये साधन इतने शक्तिशाली हैं कि हमारा भगवान से सानिध्य प्राप्त करा देंगे। इसी के माध्यम से बहुत से लोगों ने भगवान का सानिध्य प्राप्त किया है, और ये बहुत शक्तिशाली साधन है। अब ये पाप सबका धो देगा, इसके लिए हमको ये पुराने सारे उदाहरणों की आवश्यकता नहीं है। ये उदाहरण तो है ही शास्त्र के, लेकिन हम प्रमाण रूप से अपने जीवन में देख सकते हैं श्री प्रभुपाद जी के केवल कीर्तन मात्र से, वो टॉम्पकिन स्क्वायर पार्क में कीर्तन मात्र से, वो हिप्पी लोग सब नशा छोड़ के, सब पाप जीवन को परित्याग करके और शुद्ध सात्विक बन गए। तो ये कीर्तन का प्रभाव तो हमारे जीवन में हमारे आंखों के सामने देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? बहुत से लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आ गया, पाप के कर्म ही छूट गए और शुद्ध हो गए। तो कितना शक्तिशाली ये साधन है, इसका प्रभाव कितना है। प्रभुपाद लिखते हैं जहां राम कृष्ण ये नाम उच्चारण होता है ना, वो वातावरण ही इतना शुद्ध और पवित्र हो जाता है कि वहां व्यक्ति के हृदय में कोई कलमश, कोई दुख, कोई ताप, कोई संताप रह ही नहीं सकता है। वो आध्यात्मिक वातावरण बन जाता है। अब ये प्रभुपाद ने जो लिखा है भाव, ये भाव ये है जो नारद जी से किसी ने पूछा कि भगवान कहां मिलेंगे, भगवान चले गए अपने धाम, अब कहां मिलेंगे? तो नारद जी ने को भगवान ने कहा, भगवान से नारद जी ने पूछा कि अब आप तो जा रहे हैं संसार से, अपनी लीला को समाप्त करके, लीला को परिपूर्ण करके, प्रकट लीला को पूरी करके जा रहे हैं, तो ये प्रेमी आपको कहां पाएंगे? तो नारद जी को भगवान ने कहा, नाम तिष्ठामि वैकुंठे, ऐसा नहीं है कि मैं वैकुंठ में रहता हूं, मरोगे तब मुझे मिलोगे, न योगी नाम हृदयेषु वा, ऐसे भी नहीं है कि तुम घर छोड़ के हिमालय में जाके योगी बनोगे तो मिलूंगा, तो फिर भगवान कहाँ मिलेंगे? यत्र गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद, जहां मेरे भक्त प्रेम से मेरे नाम का कीर्तन करते हैं वहां मैं उपस्थित होता हूं। भगवान कहां उपस्थित हैं? कीर्तन में है। भगवान गोपियों से रासलीला में अदृश्य हो गए, उनकी उनके बीच से गुम हो गए। गोपियों ने ढूंढने का प्रयास किया लेकिन फिर कहा नहीं, चलो जहां से बिछड़े थे वहीं बैठ के कीर्तन करते हैं। और गोपियां गाने लगी गोपी गीत, जयति ते अधिकम जन्म नाम ब्रज। और जैसे गोपियां गीत गाने लगी भगवान उनके बीच में वहीं प्रकट हो गए। तो भगवान का प्रकट्य कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कल युग में तो भगवान अपने नाम के रूप में अवतार लिया है जिसकी जीवा के ऊपर प्रेम से। और यहां एक शब्द प्रभुपाद ने लिखा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, वी मस्ट नो डेफिनेटली दैट द लॉर्ड इज प्रेजेंट वेयर एवर सच ए प्योर ट्रांसलेशनल सर्विस इज परफॉर्म एंड दस द परफॉर्म ऑफ द ऑफेनलेस कीर्तन, जहां कीर्तन में कोई अपराध रहे नहीं है, अपराध रहित कीर्तन। ऐसे प्रभुपाद ने क्यों लिखा है? बहुत लोग अपने कलाकारी के लिए करते कीर्तन करते हैं, मैं अच्छा गाता हूं, गाने से कलाकारी से बाजे से कीर्तन नहीं होता है, कीर्तन हृदय से होता है। वो कीर्तन जिसके जिस कीर्तन करते हुए आंखों से अश्रु धाराएं बहती हैं, उस अश्रु धारा के एक एक बूंद के अंदर भगवान का दर्शन होता है। तो ये जो कीर्तन है, जो ऐसा कीर्तन निरअपराध जो कीर्तन करता है उसको सकारात्मिक भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसे ही भगवान के सुमरण की बात है, भगवान के वंदना का भी यही प्रभाव है, जो हमारे मन वांछित फल हमारे को प्राप्त हो जाएंगे। अगर कब मन वांछित फल प्राप्त होंगे? जब किसी प्रमाणिक अधिकृत शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में ये कार्य करेंगे। इसका मतलब परंपरागत जब ये कार्य करेंगे तो ये कार्य अपना प्रभाव निश्चित रूप से दिखाएंगे। अब प्रभुपाद सावधान कर रहे हैं कि अपने मन कपोल से कोई नया नमूना मत बनाओ, नया साधन अपना मत बनाओ, नया पंथ मत बनाओ, नया मत मत बनाओ, जो परंपरा से आ रहा है उसी को चलाओ। वन शुड नॉट कंकाउंट फॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस, अपना नया मार्ग भक्ति का बनाने की जरूरत नहीं है, पहले से चल रहा है, परंपरा से आ रहा है, उसी के ऊपर चलना चाहिए। भगवान का पूजन भगवान के मंदिर में किया जा सकता है। और फिर उदारता प्रभुपाद जी की देखो कि भगवान में मंदिर में तो विग्रह है, ठाकुर जी विराजमान है, मूर्ति है, परंतु उनको भी सम्मान दो जो भगवान के निराकार रूप के पूजा करने के लिए चर्च में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं। वो भी जाते तो भगवान को ही पूजा करने जाते हैं ना। वैसे भी ईसाई धर्म प्रार्थना प्रदान है, प्रार्थना के ऊपर आधारित है, वह प्रेयर है, ईसाई धर्म में प्रेयर है। और मुसलमान धर्म नमस्कार प्रदान है जिसमें केवल नमस्कार किया जाता है, नमाज पढ़ने का मतलब नमस्कार करना, भगवान को बार बार नमस्कार करना, लेकिन वहां भगवान का रूप नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये दो शब्द प्रभुपाद ने लिख के कृष्ण भावना को अथवा जो डिवोशनल सर्विस को, भक्ति को, प्रेम के मार्ग को सर्वव्यापक बनाया है। प्रभुपाद जी एक जगह एक भगवद गीता के श्लोक के भावार्थ में प्रवचन में कह रहे थे, यदुदपाने सर्वतो संप्लोदो तके, दूसरे अध्याय में है, छोटे छोटे कुओं से जो पानी की जरूरत पूरी होती है वो एक तालाब से हो सकती है। और इसका भाव प्रभुपाद जी उस दिन दे रहे थे कि ये कृष्ण भावना का जो भगवत प्रेम का मार्ग है, इसके अंदर जो दुनिया के मजहबों में, जो दुनिया के ना अलग धर्मों में जो जो साधन है वो सब इसमें है। जैसे एक एक कुएं से सब पानी लेने से, एक तालाब के पानी से सब काम होता है, ऐसे इसके अंदर वंदना भी है, या नमस्कार भी हम करते हैं या हम वंदना भी करते हैं। तो जो 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 जिस धर्म में जो प्रमुख चीज है वो यहां हमारे पास अपने आप सब कर ही रहे हैं, तो ये इसका भाव है यहां। मां फिर भी पाप कहते, वो भी पाप से मुक्त हो जाएंगे, उनको भी पाप में मुक्त होने में बहुत बड़ा सहायता मिलेगी। फिर लिखते हैं, परंतु उनको सावधान होना चाहिए। और सावधानी क्या करते हैं? सावधानी प्रभुपाद जी की है, प्राय ईसाई क्रिश्चियन लोग संडे के दिन जाते हैं, रविवार को कहते हैं, 7 दिन पाप किया, आप हमसे ले लीजिए और हमको मुक्त कर लीजिए, फिर वापस वही पाप शुरू करते हैं। तो ये जो है, ये जो मानसिकता है, पाप माफ करा के जैसे हम जाते हैं यहां से हरिद्वार, गंगा में स्नान करते हैं, पाप धो के आ जाते हैं, फिर वापस आके वही पाप करते हैं। तो ये जो भाव है कि इसको कहते हैं, ये बुद्धि, इस बुद्धि को कहते हैं नामो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि। भगवान के नाम के बल के ऊपर, भगवान के दर्शन के बल के ऊपर, भगवान के कीर्तन के बल के ऊपर, भगवान के सुमरण के बल के ऊपर, फिर पाप करने की मानसिकता होगी तो वो अच्छा नहीं। इसलिए पाप, एक बार पाप धोने के बाद दोबारा पाप करना नहीं चाहिए। और यहां सुखदेव गोस्वामी सुभद्र सर्व से कह के श्रवण को बहुत बड़ा बल दे रहे हैं, ये बड़ा मंगलकारी है। अब हम 16वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। विचक्षणाय चरणा चरण उपासना संगम व्युदस्या उभयतो अंतर आत्मना विंदंति ही ब्रह्म गतिम गत कल्मास तस्मै शुभद्रे सर्वसे नमो नमः। विचक्षणा कहते हैं बुद्धिमान को, इंटेलिजेंट, विशेष अक्षणा, विचक्षणा, अक्षणा आंख, जिसकी आंख सत्य को देख सकती है, बुद्धिमान है। विचक्षण कौन है? विचक्षण ये चरण उपासना, जो भगवान के चरणों की उपासना करते हैं। उपासना का मतलब है, उप का मतलब पास में, नजदीक, ऊपर, और आसन का मतलब बैठते हैं, जो भगवान के चरण कमलों में बैठते हैं, वो है विचक्षण, वो है बुद्धिमान, जो भगवान के चरणों कमलों का शरण लेते हैं। संगम विदुष्य उभ्यतो, और जो ऐसे विचक्षण है और जो ऐसे भगवान के चरणों का शरण लेते हैं, उनको विदुष्य का मतलब समाप्त कर देते हैं, उभयों का मतलब दोनों, उभयों का मतलब दोनों, दोनों को समाप्त कर, दोनों के संग को समाप्त करते हैं। कौन से दोनों को? इस जीवन के और स्वर्ग के सुखों का त्याग कर देते, उनकी जरूरत ही नहीं है। भगवान के चरणों में बैठने से इतना आनंद मिलता है कि न इस लोक न परलोक के सुखों की उनके मंदिर में कोई कामना रहती। अंतर आत्मनः, अपने अंतःकरण में, अपने मन में ये निश्चय कर लेते हैं कि यह सुख होता ही नहीं है और स्वर्ग के सुख की हमें आवश्यकता नहीं, भगवान के चरणों का सुख ही हमारा सुख है। उनको क्या प्राप्त होता है? विंदति ही ब्रह्म गतिम गत क्लमसा क्लमास, गत क्लमास, गत क्लमास का मतलब बिना किसी कष्ट के, बिना किसी कलेश के ब्रह्म गति को प्राप्त करते हैं, ब्रह्म गति को प्राप्त करते हैं बिना किसी परेशानी के, बिना किसी कष्ट के, जो यहां के और स्वर्ग के सुख का त्याग कर देते हैं, भगवान के चरणों का शरण ले लेते हैं, तो वो ब्रह्म की गति को प्राप्त करते हैं। तस्मै शुभद्रे सर्वसे नमो नमः। इसलिए जिसका श्रवण करने से सब मंगल होता है, उसको बार बार नमस्कार करते हैं। अभय चरणारविंद, नमोम विष्णु पादाय, कृष्ण पृष्ठाय नमोम विष्णु पादाय, जिसने भगवान विष्णु के चरणों का शरण लिया है, ये चरण उपासना हो गया। ऐसे महात्मा जिन्होंने चरणों का शरण लिया है भगवान के, ये भगवान के चरण क्या है, ये नौका है। भगवान के चरण को, भगवान के चरणों को भागवत में नाव या नौका या बोट कहा गया है। महद पत कृते न तव पाद पोते न, तव पाद आपके चरण, पोते न नौका है, महत कृते न, ये नौका वो नहीं है जिसके ऊपर चढ़ना पड़ता है, ये वो नौका है जिसका सहारा लें तो समुद्र छोटा होके गाय के खुर में जितना पानी है उतना छोटा हो जाता है, जिसके ऊपर से बच्चा भी फांद के कूद के चला जाए। ये नौका अद्भुत है। और वैसे भगवान का चरण कितना है, तब वामन देव के चरण का ध्यान करके देखो कि एक चरण यहां से बड़ा किया तो जाके ब्रह्मा के लोक से ऊपर जाके पर्दे को छेदन करके और कारण सागर के जल को नीचे गंगा के रूप में लाए, ये तो भगवान के चरणों का बहुत बड़ा अद्भुत शक्ति का देखो चरण कितना बड़ा है। ऐसे चरणों का शरण लेने से बुद्धिमान वो है जो भगवान के चरणों का शरण लेता है और संसार लोक और परलोक के सुखों का परित्याग करता है और अपनी अंतरात्मा में ये निश्चय कर लेता है, अंतःकरण में मन बुद्धि अहंकार में, उसको ब्रह्म गति प्राप्त होती है बिना किसी कष्ट के। ऐसे भगवान जिसके चरण कमल ऐसे हैं और जिसकी कथा श्रवण मंगलकारी है, उसको बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं सुभद्र सर्व से भगवान श्री कृष्ण को। प्रभुपाद ने लिखा है जो विचक्षण है, विशेष बुद्धिमान है, वो केवल शरण लेते हैं भगवान के चरणों का, चरण उपासना, भगवान के चरणों का शरण लेना, तो वो मुक्त हो जाते हैं। किससे? बंधन से। कौन से? इस जन्म के और भविष्य में आने वाले बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसका मतलब जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं, कहीं और जाना नहीं पड़ता है। और बिना किसी कष्ट के आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त करते हैं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं आदर पूर्वक बार बार भगवान को नमस्कार करते हैं जिसका श्रवण बहुत मंगलकारी है, उनके चरण कमलों का पूजन करने से, उपासना का अर्थ है पूजन, जैसे उपासना कांड है पूरा वेदों का, वेदों में कर्म कांड है, उपासना कांड है, ज्ञान कांड है, तो जिनके चरणों की उपासना करने से ज्ञानी, ये ज्ञानियों के, उनका कहना है कि ज्ञानी जो होते हैं, ज्ञानी लोग जो ज्ञान मार्ग में हैं, वो इस जगत के और आने वाले परलोक उसमें जो आ सकती है उस सारी को समाप्त कर लेते हैं। वही बात हुई कि संसार और स्वर्ग आदि के विचार को समाप्त कर देते हैं। और अपने हृदय में नेक्स्ट व्हिच रिजाइड इन द हार्ट, भगवान के चरणों को अंदर हृदय में धारण कर लेते हैं, लोक परलोक के सारी बाधाओं को मिटा देते हैं, उसमें कोई आसक्ति नहीं रहती है और अपने ब्रह्म, अपने लक्ष्य को, ब्रह्म को प्राप्त करते हैं बिना किसी पीड़ा के। चक्रवर्ती पाद का भाव है भक्त तो भगवान के धाम में जाते हैं, वो तो हम पहले करके आए, सारे पाप नाश हो जाएंगे और तत्काल ही भगवान को प्राप्त कर लेंगे कीर्तन। अब ज्ञानी भी जिनके पाप नाश हो गए हैं और जो भगवान का पूजन करते हैं, उद्भवतः उभव, उभयतः का मतलब है इस जीवन में और दूसरे जीवन में, और विद्वस्य का मतलब है समाप्त करना, तो अंतरात्मा का मतलब है अंतःकरण। अगर कोई भगवान के चरण कमलों की सेवा न करे और कहे कि मैं ज्ञानी हूं, तो एक श्लोक चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, ये श्लोक आगे प्रभुपाद जी में लिखा है और ये श्लोक ब्रह्मा जी ने कहा है जो चार वेद को देने वाले हैं। अगर कोई कहे कि मैं ब्रह्म को जानता हूं तो ब्रह्मा जी से ज्यादा तो कोई नहीं जानता है, वही तो वेदों को देने वाला है। ब्रह्मा जी कहते हैं श्रेया श्रुतिम भक्ति मुदेश्य ते विभो क्लिशन्ति ये केवल बोध लब्ध्ये तेषाम असौ कलेश एव शिष्यते न अन्यद् यथा स्थूल तुषा वघातिनाम। भगवान कौन से भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं ब्रह्मा जी? 5 वर्ष के छोटे श्री कृष्ण को। 5 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं, बछड़े चराते हुए ग्वाल बाल और बछड़े चुरा के ब्रह्मा जी ले गए और साल पूरा हो गया और कृष्ण के साथ वैसे ही बछड़े वैसे ही ग्वाल बाल और देखे दो जगह पे छुपे हुए भी देखे और कृष्ण के साथ वैसे देख के आश्चर्यचकित होके नीचे उतर के आया और ये प्रार्थना कर रहा है बछड़े और ग्वाल बाल देखे। श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदीस्य ते विभो क्लिशंति, आपकी चरणों की भक्ति न करके केवल ज्ञान के पीछे भागते रहे तो ये समझ लो कि भूसा कूट रहे हैं, चावल उसमें है नहीं तो उनको क्या मिलेगा। क्लेशाद उनका जीवन बड़ा क्लेशमय हो जाएगा। नान्यत यथा स्थूल तुषा, तुष कहते हैं ऊपर का, तुष का मतलब छिलका। और उनको प्रभुपाद ने इसको बहुत सरल भाषा में लिखा है, मुट्ठी भर चावल हो तो वो अच्छा है, एक कुंटल भूसा भूसा मिले तो उससे पेट नहीं भरेगा। तो यहां इसका अर्थ ये है, एकमात्र भक्ति श्रेय श्रुतिम भक्ति, भक्ति श्रेष्ठ है। उदस्यते विभु भगवान आपकी, क्लिशंते ये केवल बोध लभया, केवल जो कहते हैं मुझे ज्ञान चाहिए ज्ञान चाहिए ज्ञान चाहिए, वो तो बड़ा कष्ट उठाते हैं और भूसा कूटते हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं आपको विचक्षण अगर बनना है, प्रभुपाद जी ने बहुत सीधा बात लिखी है, बार बार अर्जुन को, और वास्तव में देखा जाए तो अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान ने कहा है कि शुद्ध भक्त बन जाओ। इसलिए हम बार बार ये कहते हैं भक्ति में भगवान के उपदेश अनेक है, आदेश एक है। उपदेश का मतलब है, क्योंकि बहुत से लोग अलग अलग स्तर पे हैं, कोई कर्म का अधिकारी है, कोई ज्ञान का अधिकारी है, कोई योग का अधिकारी है, तो उपदेश उनके लिए है। आदेश एक है, भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, ये एक आदेश एक ही है। और यहां प्रभुपाद जी उस बात को लिख रहे हैं कि अर्जुन को बार बार कहा, ये समझ लो अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान ने शुद्ध भक्त बनने के लिए आदेश दिया है। और वो शुद्ध भक्त कैसे बना जाए, वो भगवत गीता के 18वें अध्याय में 64 से लेकर 66 श्लोक तक, ये 3 श्लोक प्रभुपाद जी ने यहां दिए। जिसको विचक्षणा बनना है, बुद्धिमान बनना है, विशेष बुद्धिमान बनना है, भगवान के चरण की उपासना करनी है, तो ये 3 श्लोक जीवन में धारण कर ले। सर्व गोह्यत्मं भूय शृणो मे परमं वच स्तोषी मे दृढ़मिति ततो वक्षामि ते हितम्। ये सबसे गोपनीय ज्ञान अर्जुन मुझसे फिर एक बार सुनो, ये मेरे परम वचन है, पहले भी सुनाए हैं फिर दोबारा सुना रहा हूं, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो और तुम्हारा इसमें कल्याण होगा, इसलिए मैं तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूं। क्या कह रहे हो? वही बात जो पहले कही है 9वें अध्याय में, मन मना भव मद भक्तो मध्याज इमाम नमस्कृ प्रतिज्ञाने प्रियोसी में सर्वधर्मान परित्यजमामि कम शरणम व्रज अहम तुम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये है विचक्षण बनने का साधन। मुझे अर्जुन आप बहुत प्रिय है भगवान कहते हैं, इसलिए मैं बहुत गोपनीय ज्ञान आपको दे रहा हूं। और क्या है वो? बस शुद्ध भक्त बन जाओ, मुख्य बात ही। प्रभुपाद लिखते जो बुद्धिमान है उसको गीता के इस संदेश का बड़ी गंभीरता से पालन करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, और तभी वो पहला स्तर ज्ञान का, आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार के पहले स्तर पे आगे बढ़ सकते हैं। ये तीन श्लोक सारांश है गीता का। जैसे कोई अपना सामान सारे के ऊपर जो सबसे अच्छी चीज है उसको ऊपर ठप्पा लगा के लगा रखता है, इसके अंदर ये सबसे अच्छा है। आप किसी पुस्तक के पीछे देखें जो उसमें सबसे गोल्डन वर्ड होते हैं उसको बाद में देते हैं, तो ये गोल्डन वर्ड है गीता के। ये भगवान का उपदेश और आदेश दोनों है। प्रभुपाद लिखते हैं पहले तो पहला स्तर आध्यात्मिकता का हो जाएगा, और इसको कहते हैं पहले स्तर को समझ ले तो फिर आगे बढ़ेगा, तो इसको गुह्यतम ज्ञान कहा गया है। और भगवत गीता के इस ज्ञान को किसी ने सार्थक कर लिया, समझ लिया, तो निश्चित रूप से वो अपने आप स्वत ही वॉलंटियरली भगवान की सेवा में लगेगा, भगवान की दिव्य सेवा में लगेगा। और भगवान की सेवा हमेशा प्रेम के ऊपर आधारित होती है। सेवा के बदले में कुछ चाहिए नहीं, जैसे मां को बच्चे की सेवा करती है उससे कुछ चाहिए नहीं, उसी सेवा में ही सुख मिलता है उसको। तो भक्त को भगवान की सेवा में ही सुख मिलता है, वो प्रेम के ऊपर आश्रित है, सेवा प्रेम के ऊपर आश्रित है। और आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं ये जो प्रेममय सेवा है ये उन सारे और उपदेशों से अलग है जो भगवान ने भगवत गीता में कर्म योग में दिए। उसमें प्रेम नहीं है, उसमें फल है। ज्ञान योग में दिए हैं उसमें भी हृदय साफ होने की इच्छा है, अपना स्वार्थ है। जो ध्यान योग का उपदेश दिया है उसमें भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो इन तीनों से ये प्रेममयी भक्ति विलक्षण है। ये प्रभुपाद जी विशेष यहां लिख रहे हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि सकल अशांत। भुक्ति का मतलब कर्म, मुक्ति का मतलब ज्ञान, और सिद्धि का मतलब योग। सकल अशांत, ये सारे अशांत है क्योंकि इनकी कोई कामना है अभी पूरी नहीं हुई है, कुछ मांग रहे हैं। कर्मी कुछ भोग मांग रहा है, ज्ञानी ब्रह्म में लीन होके भगवान बनना चाह रहा है, तो ये भी बड़ी इच्छा है। और योगी सिद्धियां प्राप्त करके चमत्कार दिखाना चाह रहा है। कृष्ण भक्त निष्काम अतेव शांत, लेकिन भगवान के भक्त को कोई कामना नहीं है, केवल भगवान की प्रेममयी सेवा है, इसलिए प्रकृष्टेण रूपेण शांत, परम शांति है उसको। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं भगवत गीता में अलग अलग उपदेश हैं, उपदेश अलग है। कौन से उपदेश हैं? अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग उपदेश हैं। वर्णाश्रम धर्म का उपदेश है, सन्यास धर्म का उपदेश है, यति धर्म का उपदेश है। कई बार भगवद गीता में यति शब्द आया है, यति नाम। यति का मतलब यतनशील, जो इंद्रियों को वश में करता है। सन्यास तो 18वें अध्याय को तो सन्यास योग कहते हैं, कर्म सन्यास योग। तो ये सन्यास का उपदेश है, वर्णाश्रम धर्म का उपदेश है, यति धर्म का उपदेश है, इंद्रियों को संयम में करने का उपदेश है, ध्यान का उपदेश है, और ध्यान योग का उपदेश है, और भी बहुत सारे उपदेश है। परंतु जो भगवान का शरण लेके और प्रेममय उनकी सेवा करता है, स्वत ही सेवा में लगता है, उपाय जी बहुत बड़ी बात लिख रहे हैं, जो केवल भगवान की सेवा में लगता है, सारे वेदों का ज्ञान उसके हृदय में अपने आप प्रकाशित हो जाता है। उसको उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अलग पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं, स्वयं स्पर्ते अधा, अपने आप भगवान उसके हृदय में सारा वेदों का ज्ञान प्रकाशित कर देते हैं। केवल भक्ति करे भगवान की, हमारे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कोई बड़े पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सबसे दुनिया का उस समय का बड़ा विद्वान उनका शिष्य बना भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी। उनके पास सारे शास्त्रों के विद्या विद्या का सार भगवान की शुद्ध भक्ति थी। तो उसके अंदर ये सब चीजें अपने आप आ जाती है। अगर बड़ी बहुत प्रभुपद लिखा है स्किलफुली, वन हु अडॉप्ट दिस मेथड वेरी स्किलफुली अटेन परफेक्शन ऑफ लाइफ एट वंस। अगर बहुत सावधानी से इस एक साधन को अपना ले तो निश्चित रूप से इसी जीवन में सब सफलता हो सकती है। अब ब्रह्म गति की बात कर रहे हैं। ब्रह्म गति क्या है? श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं ब्रह्म गति का मतलब है भगवान के समान स्वरूप को प्राप्त करना। जैसे वैकुंठ में चतुर्भुज रूप में सब जीव रहते हैं, इसको कहते हैं ब्रह्म गति। एक ब्रह्म गति का ये अर्थ अगर मान लें कि भगवान के मन की बात जान जाते हैं, कोई नहीं जानता, शंकर नहीं जानता, ब्रह्मा नहीं जानता, हम पढ़ के आए कुछ दिन पहले, ब्रह्मा जी नहीं जानते हैं, शंकर जी नहीं जानते हैं, परंतु ग्वाल बाल कहते हैं कृष्ण तुम्हारे मन की बात हम जानते हैं, तुम कौन सी गोपी के घर में माखन चोरी करने जाओगे। श्री रूप गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोअभिष्ट को जानते हैं, ये ब्रह्म गति को जानते हैं। रामायण का केवट कृष्ण को, राम जी को कहते हैं मैं आपके प्रभाव को जानता हूं, आपकी आपके चरणों के स्पर्श से पत्थर की नारी बन गई, मेरी नौका कहीं नारी बन गई। तो ये जो भगवान के ऐसे भक्त हैं जो भगवान की गति को जानते हैं, वो ऐसे शुद्ध भक्त जो भगवान के चरणों का शरण लेते हैं वो भगवान की गति को जानते हैं। और जीव गोस्वामी कहते हैं भगवान के धाम में भगवान सारूप्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और इसको प्राप्त करने के लिए करना क्या है भक्तों के लिए? सरल साधन है इसके लिए, कीर्तन करना, स्मरण करना, श्रवण करना, ईक्षण करना। जो इससे पहले हमने श्लोक पढ़ा है वो श्लोक विचक्षण बनने का बहुत सरल साधन है और मानव समाज में ये सब के लिए सुलभ है। और फिर वही श्लोक ब्रह्मा जी का प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं, केवल कोरा ज्ञान भगवान की भक्ति के बगैर, बिना भगवान की भक्ति के भक्तिहीन ज्ञान घास को छो भूसे को कूटने के बराबर है। श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदेश्य ये ते विभो क्लेशन्ति ये केवल बोध लब्ध्ये तेषाम असौ क्लेश एव शिष्यते नान्यद् यथा स्थूल तुषाग तुषवाघातिनाम। प्रभुपाल ने भक्ति योग, भक्ति योग जो है सिद्धि की परम काष्ठा है और बुद्धिमान उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बताया गया यत कीर्तनम यत अक्षणम यत स्मरणम, अगर ये करेंगे तो प्राप्त कर लेंगे। यहां उदाहरण बहुत अच्छा दिया गया है, मुट्ठी भर चावल बोरी भर भूसे से अच्छा है। केवल कोरा ज्ञान हो और भगवान की भक्ति नहीं हो, प्रभुपाद जी यहां लिखा है कि कर्म कांड ज्ञान कांड, ये नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या, कर्म कांड ज्ञान कांड विषयर भांड। विषयर भांड का मतलब ये सब इंद्रिय तृप्ति के ही साधन हैं, इनसे कोई ज्यादा लाभ नहीं हो सकता है। और फिर ये योग, इससे कोई ज्यादा लाभ नहीं होता है। इसलिए कीर्तन श्रवण श्रवण करें और वो भी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में करें तो बिना किसी कष्ट के, बिना किसी क्लेश के भगवान के चरण को, परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो ज्ञानी की बात है। अब समय तो हो गया, ये श्लोक श्लोक पढ़ लेते हैं। तपस्वीनो दान परायशस्वीनो मनस्वेनो मंत्र विध सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यद अर्पणम तस्मै शुभद्र सर्वशे नमो नमः। तस्मै शुभद्र सर्वशे नमो नमः, ये तीन श्लोकों में आया है। अभी पहले तीन श्लोकों में नमस्कार आया, फिर तीन श्लोकों में ये आया है कि जिसका श्रवण शुभ का मंगलकारी है उसको नमस्कार करते हैं। इसमें मुख्य शब्द है विना यद अर्पणम, बिना अगर भगवान को अर्पण किया जाए तो कोई बड़ा तपस्वी हो, ज्ञानी है, तपस्या करता है, या दान परायण हो, कोई कर्मी हो, यशस्वी कोई हो, बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ आदि किया हो, मनस्वी कोई हो, मननशील योगी हो, मंत्रविदा हो, कोई बहुत बड़ा वेदज्ञ पंडित हो, सुमंगल ही हो, बड़ा शुभ कार्य करने वाला हो, क्षेमम न विन्दति, कोई लाभ नहीं है, विना यद अर्पणम, जब तक भगवान को अर्पण नहीं किया जाए कोई लाभ नहीं। तो कार्य कोई भी करो, यज्ञ करो, ताप करो, दान करो, लेकिन कृष्ण अर्पण वस्तम कहे अस्तु, कृष्ण अर्पण वस्तु नहीं कहेंगे तो कोई लाभ नहीं है। तो इस मंत्र के ऊपर आज कथा को विराम देते हैं, कल इसका भाव का श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है?
दो छोटी छोटी चीज पूछनी थी।
हाँ जी,
अभी आपने पिछले श्लोक के जो तात्पर्य इसमें फुटफुट में हम सुन रहे थे, प्रभुपाद जी बता रहे हैं नामनो बलाद यस्य ही होती।
हाँ हाँ,
नाम, ये नाम के बल पर जो अपराध है उसकी बात कर रहे हैं ना?
असल में बात उसकी कर रहे थे, लेकिन जो संदर्भ था वो असल में जो संडे को पाप का माफ कराते हैं और फिर पाप करते हैं उसको लेकर प्रभुपाद जी ने उसका उस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा है।
हाँ ठीक है, वो तो, लेकिन प्रभुपाद जी ने एक वर्ड इसमें यूज किया, मैं वो क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि क्या इसको सेवा अपराध में ले रहे हैं या प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इट इज द ग्रेटेस्ट ऑफेंस इन डिस्चार्ज ऑफ डिवोशन सर्विस।
देखो, नाम के बल के ऊपर अपराध करना, ये उतना जैसे जैसे वैष्णव अपराध के बराबर नहीं, उतना भारी नहीं है। हाँ, उतना भारी नहीं है। ये नाम, यस्य नाम बलाद यस्य बुद्धि, ये बुद्धि अभी ये है कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं इसलिए जो अपराध करूंगा मेरे को माफ हो जाएंगे, लेकिन दोबारा न करे, ये मानसिकता जो है, इस मानसिकता का यह वर्णन किया जाए। और दस अपराधों में, दस नाम अपराधों में एक यस्य नाम, नाम अपराध के ऊपर, वहां दस अपराधों में एक अपराध तो ये है।
जी जी,
सेवा अपराधों को तो नाम अपराध से माफ किया जा सकता है, सेवा अपराध की मार्जन या सफाई या उससे बचना नाम से। और नाम अपराध से बचने के लिए कोई साधन नहीं है, नाम ही केवल है, उसको ही प्रार्थना करनी है। तो नाम के बल के ऊपर अपराध न करे, इसका मतलब ये है। या नाम का अर्थ, भगवान ने या नाम का पूजन लिया है, श्रवण कीर्तन ये सबको नाम में ही लिया है, भगवान का दर्शन आदि सब जो अर्चन जो भी है वो नाम के अंतर्गत ही लिया है।
जी जी,
हाँ जी।
और एक उसके पिछले श्लोक में राधासा जो आपने,
राधसा, राधसा, हाँ हाँ हाँ,
क्या हम इसको ले सकते हैं कि राधा रानी का रेफरेंस यहाँ पे दिया है?
असल में अपने अपने आचार्यों ने लिखा नहीं है, किसी ने ऐसा, दोनों ने तो नहीं लिखा है, कम से कम श्रील प्रभुपाद जी ने और चक्रवर्ती पाद ने। हमने सुना निश्चित रूप से है महात्माओं के मुख से के रसिक जो है इसका भाव लेते हैं स राधा, राधा और कृष्ण के समान कोई नहीं है और वो ब्रज में लीलाएं करते हैं, ये संकेत तो दोनों में मिलता है, प्रभुपाद जी के और चक्रवर्ती पाद के ठीका में। और ये कोई कहता है राधा शब्द है ही नहीं भागवत में, ये सीधा राधा लिखा हुआ है, लेकिन इसका अर्थ लिखा है भगवान की शक्ति, और वैसे राधा है भी भगवान की शक्ति, शक्ति इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो ये रसिकों का भाव है। हाँ जी, और कोई
प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्णा मनोज जी।
हरे
हरि
कृष्णा प्रभु जी। प्रभु
बोल।
जी, मैंने योगी नाथ जी से ना एक वो सेट लिया, भागवत श्रीमद् भागवतम का
हाँ जी,
एक सेट लिया है श्रीमद् भागवतम का, पूरा
बहुत अच्छा
18 वॉल्यूम।
बहुत अच्छा। जय
तो
हो।
मुझे आप, प्रभु
किससे लिया,
जी आप मुझे बताइए। हाँ जी, योगी
कहाँ से लिया?
नाथ जी ने,
हाँ,
योगी नाथ जी ने
ओ
दिलाया।
योगी राज ने दिलवाया। अच्छा ठीक है, योगेश ने दिलवाया, बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ जी,
मैं तो उनके सारे आप तक पहुंचा हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इसका दूसरे अध्याय को खोल के पढ़िए जो पढ़ रहे हैं आजकल।
हाँ, तो मुझे आप ये बता दीजिए, मुझे स्टार्ट कैसे करना, ना कैसे पढ़ना चाहिए
अभी
इसको,
जो चल रहा है उसको
फर्स्ट
साथ
स्टेप
ले
क्या।
चलो, जो अभी पढ़ रहे हैं दूसरे स्कंद का उसको चालू करो, वहीं से चालू
जी
करो।
जी जी
हाँ जी, हाँ
चलिए ठीक।
हाँ ये तो
हरे
मिश्री
कृष्णा
की
प्रभु जी,
तरह
हरे
मीठा
कृष्णा
है,
प्रभु
जहां से
जी।
खाओगे वहां से मीठा है।
जी जी
हाँ भाई,
हरे
मिठाई होती है,
कृष्णा।
ये थोड़ी देखते हैं कि कहाँ से इसको जो है काटना है, मुंह में डालना है, कहीं से डालो, मीठा है। भागवत तो भगवान है का, चरण कमल है। वैसे पहला और दूसरा स्कंद चरण कमल है, हम दूसरे में, आप दूसरे से शुरू कर दीजिए। अभी जहां से हम पढ़ रहे हैं इसी को पढ़ते चलिए साथ में।
हरे
धन्यवाद।
कृष्णा प्रभु जी, हरे
हरे
कृष्णा, हरे
कृष्ण, हरे कृष्ण।
कृष्णा प्रभु जी। प्रभु
हाँ जी, हाँ जी,
जी, आज मुझसे ना किसी ने क्वेश्चन एक पूछा था, तो मुझे तो जवाब देना नहीं आया, तो मैंने उनको बोला था कि मैं आपसे पूछ के बताऊंगी।
हाँ
वो
जी,
ये कह रहे थे कि जैसे चारों युग हैं, जैसे सत्ययुग, कलयुग के बाद जैसे भगवान कली रूप उसमें आएंगे, कल्कि अवतार में आएंगे, और सब एनाइलेशन होने के बाद दोबारा सतयुग से शुरू होगा साइकिल।
हाँ
तो
जी,
वो ये पूछ रहे थे कि पर कलयुग में जब खत्म होंगे, तो कलयुग में तो लोग मतलब उनकी प्रवृत्ति जो है वो तो सब कंटेमिनेटेड ही है, और सतयुग का जो वातावरण है वो बिल्कुल अलग है, तो वो कैसे होगा कि मतलब जो गलत लोग जब सतयुग में जाएंगे तो उनका कैसे वो प्योरिफिकेशन होगी।
देखो ये एक लोक नहीं है जो हम देख रहे हैं, इस लोक में रहे हैं, ये एक लोक है, ऐसे और कोटि लोक हैं। तो और लोकों में कुछ अच्छे लोग रहो रहे हैं, जब सत्युग होगा तब हमारे यहाँ वो लोग आ जाएंगे और ये पापी लोग सब नरक में चले जाएंगे, वहां जगह बहुत पड़ी है।
अच्छा
आप एक लोक को, हमारे सिर्फ दुनिया को एक दुनिया मत समझो ना, ऐसे और कितने लोक हैं उनमें अच्छे लोग भी रह रहे हैं ना, वो सत्यलोक में, सत्युग में आके यहाँ अपना काम शुरू करेंगे, और ये जो पापी लोग हैं ये बेचारे चले जाएंगे, फिर कुछ समय नरक में रहेंगे और फिर जब दोबारा सुधर जाएंगे तो आ जाएंगे। तो हम क्या है,
अच्छा
हमारी
ठीक
दृष्टि,
है।
हम एक लोक को देखते हैं। तो अभी किसी लोक में, अभी सतयुग चलता होगा, किसी लोक में सत्रेता चलता होगा, किसी तो वहां का जो सतयुग वाले हैं वो यहां आ जाएंगे, इसमें क्या है?
अच्छा, ठीक है ठीक
क्योंकि
है।
ये जो एक लोक नहीं है, ऐसे बहुत से भौतिक लोक हैं उनमें ये चार युग अपनी जगह चल ही रहे हैं, और ऐसे भगवान का अवतार भी सब लोगों में हो ही रहा है, और हमने देखा है कि चतुर्मुखी ब्रह्मा हमारा है, ऐसे हजार मुखी ब्रह्मा भी हैं, तो उन लोकों में भी तो लोग रह रहे होंगे ना, तो कहीं तो, सतयुग भी चलता होगा अभी, ऐसे
हाँ जी,
समझना
हाँ जी,
चाहिए, ऐसे समझना चाहिए।
ठीक
हाँ
है
जी,
ना।
हाँ
थैंक
जी,
यू।
एक प्रश्न ऐसा पूछा था कि सब लोग यहाँ के अगर भक्त बन के भगवान के धाम चले जाएंगे तो ये दुनिया खाली हो जाएगी, तो उसका उत्तर ये दिया था, बहुत से पापी और बैठे हैं ये दुनिया भरने के लिए, ऊपर खाली को खाली नहीं होगी, आप चिंता मत करें। हाँ
अच्छा ठीक है
हाँ
ठीक है।
हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निदाई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।